ओम शांति। हम सब परम सौभाग्यशाली हैं कि हमारे बीच हम सब की परम आदरणीय दीदी सुदेश जी हम सबका ज्ञान रत्नों से श्रृंगार करने के लिए अपने अमृत वचन बरसाने के लिए हमारे बीच हैं। तो हम पुनः दीदी का करतल ध्वनि से स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं। दीदी 1956 में बाबा के पास आई और डबल शिक्षिका बाबा ने आपको बनाया। 16 वर्ष की अल्पायु में ही आप हेड मिस्ट्रेस बन गई थीं। वहां तो एक ऐसी शिक्षिका थी जहां सभी विद्यार्थियों को बहुत ही सहज और सरल रूप से आप शिक्षा दिया करती थीं और वही एक स्वरूप बाबा के ज्ञान में आकर बाबा के ज्ञान को भी बहुत ही सहज सरल करके सब तक पहुंचाने का दायित्व आपने अपने ऊपर लिया। ज्ञान का इतना सुंदर मनन, चिंतन, मंथन और ज्ञान की टिकलू टिकलू करने में इतनी माहिर कि बाबा आपको ज्ञान की बुलबुल कहा करते थे कि बुलबुल क्या ज्ञान की टिकलू टिकलू कर रही हैं, क्योंकि दीदी का पूरा ही जीवन जब से बाबा के पास आई ज्ञान में ही रचा बसा रहा। ज्ञान का मनन, चिंतन, मंथन करते हुए बाबा के ज्ञान को जन जन तक पहुंचाना। 100 से भी ज्यादा देशों में दीदी भ्रमण कर चुकी हैं और शिव ध्वज बाबा का 100 से भी ज्यादा देशों में आपने फहराया है। हर स्थान की आत्माएं हमेशा ही आतुर रहती हैं कि कब सुदेश दीदी हमारे बीच आएं, और जैसे ही आपका आगमन होता है, जिस स्थान पर भी आगमन होता है, सभी आत्माएं बिल्कुल ही चात्रक की तरह आपको सुनती हैं और आप भी ज्ञान योग की उसी गहराई में सरसता पूर्वक ले चलती हैं। ज्ञान की गहराई में कैसे उतरना होता है वो दीदी हम सबको सिखाती हैं। हम सभी जानते हैं दीदी इतनी बड़ी यज्ञ की भूमिकाओं को अदा करते हुए भी हमेशा ही सबके लिए इजीली अवेलेबल रहती हैं। ये हमारे बड़ों की विशेषता है। अब ब्रह्मा कुमारी इसकी जॉइंट चीफ हैं। यूरोपियन कंट्रीज की जो भी वहाँ के हमारी ब्रांचेज हैं उसकी भी आप डायरेक्टर हैं और ज्ञान सरोवर की भी आप निदेशिका हैं। इतने बड़े बड़े पदभारों को संभालते हुए भी इतनी सहज, सरल और इजीली सबके लिए अवेलेबल, तो ऐसी हम सबके परम आदरणीय दीदी जी से अनुरोध करूंगा कि आज का जो सुंदर विषय है प्रकृति जीत विघ्न प्रूफ स्थिति, उस पर हम सभी को प्रकाश दें। आदरणीय सुदेश दीदी जी,
ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। प्रकृति जीत कर्मातीत स्थिति के अभ्यासी अति स्नेही भाई बहनों को गुड इवनिंग। प्रकृति जीत स्थिति, तो प्रकृति तो अनादि, जैसे आत्मा अनादि है, अविनाशी है, परमपिता परमात्मा भी अनादि अविनाशी है। प्रकृति उसको किसी ने रचा नहीं, पहले से रची हुई है। तो जो चीज अनादि है और सदा के लिए है, उसको जीतने का अर्थ क्या है? प्रकृति ने ही हमको, अथवा पांच तत्वों ने, प्रकृति माना पांच तत्व, यह प्रकृति और पुरुष का खेल है। इस संसार में हम यहाँ क्या कर रहे हैं? खेल खेल रहे हैं। इस बेहद के नाटक में हम भिन्न भिन्न नाम के नाम से बाबा ने कहा कभी का हार और जीत का खेल, तो कभी का राज पाने और राज गवाने का खेल, राइट, तो कभी इनसॉल्वेंट सॉल्वेंट बनने का खेल। ये खेल है और खेल खेलने का आधार तो पांच तत्व हैं। ये प्रकृति है, प्रकृति और पुरुष, आत्मा पुरुष है, शरीर प्रकृति है। प्रकृति अथवा पांच तत्वों का बना हुआ है, ये हमारा पहला सबक हमको मिला है। इसका महत्व बहुत है। बिना प्रकृति के आधार लिए परमात्मा भी कार्य नहीं करते। परमपिता परमात्मा को भी प्रकृति का आधार लेना पड़ता है, उधार लेना पड़ता है। मां से प्रेरणा से कार्य नहीं करते, तो फिर हम प्रकृति जीत बन के रहे हैं, तो प्रकृति को जीते इसका मतलब क्या है? क्योंकि एक तरफ देखें तो प्रकृति के आधार से ही हमने अपनी वैल्यू को, जो आत्मा का स्वमान कहें, आत्मा की ओरिजिनल शक्तियां कहें, आत्मा को परमपिता परमात्मा से जो वर्षा मिला है, वरदान मिला है, शिक्षा मिली है, उसको एक्सप्रेस करना और उसका एक्सपेरिमेंट करना प्रकृति के बगैर तो नहीं है। वैल्यू भी हमारी इस प्रकृति में आने से, आत्मा की जो स्वाभाविक संस्कार है, स्वमान कहें अथवा वैल्यू को, वैल्यू जाना जाए, मानो एक बैग में 1 किलो बीज पड़ा है, 2000 बीज रखे हुए हैं। वो बेपेड़ उस बैग में कितने समय भी पड़े रहे, उसकी वैल्यू बढ़ेगी नहीं। परंतु उसी बैग में से 5 बीज हमने धरती पर लगा दिए, तो 5 वर्ष में 1 फल की बीज, 1 बीज का, 1 फल का बीज उतना ही वैल्यूबल, उससे भी परहैप्स वैल्यूबल ज्यादा हो जितना कि बैग में बीज पड़े हैं। तो ये प्रकृति शरीर में आने से हमने अपनी वैल्यू क्या है हमारी, उसका हमको अनुभव होता है। परम धाम में आत्माएं हैं तो सभी शांत स्वरूप हैं, हम भी आत्माएं शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, पवित्र स्वरूप, शक्ति स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, सत्य स्वरूप। परंतु सत्युग में आने पर ही, प्रकृति का आधार लेने पर ही हम हेल्दी भी रहते हैं, वेल्दी भी रहते हैं, हैप्पी भी रहते हैं, आयु भी बड़ी होती है, स्टेज भी सत्व प्रधान होती है, स्नेह संपन्न भी हैं, दिव्य मूरत भी हैं। तो प्रकृति के विशेषताएं, उन विशेषताओं को अपनी विशेषता बनाना स्व स्थिति से, आत्मिक स्थिति से, परंतु प्रकृति में फिर एक चीज स्वाभाविक है, वो क्या है कि प्रकृति जल्दी प्रभावित होती है, अपने गुण का त्याग कर देती है। चैतन्य न होने के कारण देखा गया हवा बहुत शुद्ध चल रही थी, गंदे वातावरण से गुजरी, बदबू लेके आ गई, हवा तो वही थी, गर्म हवा ठंडी हवा गर्म हो गई, संग का रंग लग गया, प्रकृति का दूसरी प्रकृति के तत्वों पर प्रभाव पड़ा, तो जो प्रकृति की स्वयं की स्थिति थी वो नहीं रही। तो हमको प्रकृति जीत बनने का मतलब कि हम आत्माएं प्रकृति की विशेषताओं को तो अपनी विशेषताएं बनाएं, क्योंकि पांचों तत्वों का बहुत महत्व है। धरती न हो तो हम रहेगा, ये तो कर्म क्षेत्र है, ये तो स्टेज है, हम पार्ट कैसे प्ले करें। लाइट ना हो, जल ना हो, सूर्य नहीं हो, अग्नि नहीं हो, वायु नहीं हो, जी सकेंगे? आकाश ना हो तो ये बेहद कई भावना को सृष्टि के खेल को खेल सकेंगे? तो विशेषताएं तो बेहद की हैं प्रकृति की, परंतु देह के भान से, अथवा बाबा बार बार कहते हैं देह का अभिमान छोड़ो, स्व स्थिति आत्मा की स्थिति में स्थित रहो, आत्माभिमानी आत्मा को आत्मा मान करके ही रहो, उसी के स्वमान में रहो। परंतु हम आत्माएं फिर जो अब प्रकृति में पांच तत्वों में तमो प्रधानता आ गई है, उस तमो प्रधानता को जीतने की शक्ति हमारे में चाहिए। देह भान में आने से हम प्रकृति के जो कमी है अथवा जो उसमें मिक्स हो गया है, वो मिक्सचर को असत्यता को ले लेते हैं, तो स्थिति बिगड़ते हैं, परिस्थिति हमारे पर प्रभावित हमें प्रभावित करती है। मिसाल के तौर पर प्रकृति का पहला गुण धरती है, प्रकृति की पहली वस्तु शरीर है, कोई शरीर छोड़ता है तो कहते हैं डस्ट टू डस्ट, मिट्टी से मिट्टी में गया, तो प्रकृति जल जल में मिल गया, अग्नि अग्नि में, पांच तत्व में मिल गए। तो शरीर का पहला तत्व, ये शरीर धरती कहेंगे, और धरती प्रकृति का पहला गुण, धरती का पहला जो लक्षण है, विशेषता है, वो ग्रेविटी है, आकर्षण है। तो बाबा कहते हैं ना किसी से प्रभावित हो, ना किसी को प्रभावित करो, ना किसी पर आकर्षित हो। तो जितना मैंने अगर अपने आप को देह का भान मुझे रहा, देह का अभिमान मुझे आया, तो मैं प्रभावित होंगी, मुझे मैं उस तरफ खिंच के ही जाऊंगी। बार बार मेरा संकल्प वहां उसी तरफ खींचता रहेगा। अथवा ये कह कि ग्रेविटी प्रकृति प्रकृति को खींच, इस प्रकार से देह भान को खींचता है शरीर भान, दूसरे को भी शरीर भान दे अभिमान में ले आता है। दूसरा तत्व है शरीर में 80% 90% ब्लड और पानी है, जल, और उसमें इमोशंस हैं, हलचल है। कहाँ हमारा संबंध ब्लड कनेक्शन का है, तो उस ब्लड कनेक्शन के कारण हमारे विचार, हमारे इमोशन, हमारा रिएक्शन हमारे अपने स्वरूप वाला नहीं होता। माँ बाप बच्चों को बीमार देखते हैं, माँ परेशान हो जाती है, वही बीमारी नर्स देखती है, परेशान नहीं होती है। स्थिति वही है, बीमारी को देखा पर मेरा बच्चा बीमार है, चिंता लग गई। पड़ोसी का घर में कोई बीमार है, रात को बहुत नींद नहीं आई क्योंकि एम्बुलेंस आती रही जाती रही, मेरे को तो नींद ही नहीं आई एम्बुलेंस के कारण। मेरे घर से ही मेरा कोई संबंधी बीमार है, एम्बुलेंस आई, मेरी नींद खराब नहीं हुई, मैंने अटेंशन से जागी, नींद को जीत लिया। तो जहां ब्लड कनेक्शन है वहां अटैचमेंट है। तो पानी में अटैचमेंट समाया अथवा इमोशंस इमर्ज होते हैं ब्लड कनेक्शन के कारण। देह में ब्लड है, कहेंगे जनरल रिवाज क्या है, एक स्वाभाविक हो गया है, फ्रेंडशिप बढ़ानी है, लेट अस हैव ए कप ऑफ टी, ओके लेट अस हैव ए कप ऑफ टी, थोड़ा एकांत में बैठ करके कप, वो कप ऑफ टी पीते पीते कप टी बन गए। झूठ बोलना शुरू कर दिया, देर से क्यों आए, देर से क्यों आए, ऑफिस में बहुत काम था, था टाइम बिताया, चाय पीते टुगेदर, सर नजदीक आए, आकर्षण बढ़ा, इमोशंस बढ़े, नजदीकी आई, झूठ बोलना शुरू किया, छिपाना शुरू किया, कोई ने थोड़ा इशारा दिया तो गुस्सा करना शुरू किया, मेरे पर शक करते हो, आपको मेरे पर विश्वास नहीं है, तो बहुत सारी बातें जो अवगुण हमारे में नहीं थे वो प्रकृति के प्रभाव में आते ही हमारे अंदर आ गए। हम जीता नहीं उसको, पर जल का गुण तो नेचुरल स्वाभाविक शीतल है, अग्नि को बुझाने वाला है, क्रोध को जीतने वाला है। तो क्रोध को जीतने के लिए, अग्नि को जीतने के लिए जल चाहिए। जल की विशेषता है कि अगर पानी में आग डालो तो भी आग बुझेगी, आग में पानी डालो, आग पर पानी डालो तो पानी बुझेगा, आग बुझेगी। तो पानी के अंदर इतनी विशेषता है कि उसमें आग आए भी सही करके बुझ जाएगी, डाला तो भी बुझ जाएगी, इतनी शक्ति है पानी में। ऐसे ही हम आत्मा का गुण, हमारी प्रकृति, हमारी नेचर, आत्मा शांत स्वरूप है, मुझे आत्मा का घर शांति धाम है, मैं अखंड ज्योति मह तत्व में शांति धाम में शांति के सागर की संतान, ये मुझ आत्मा का अपना असली गुण है, शक्ति है, संस्कार है, स्वभाव है, तो मुझे गुस्सा क्यों आ गया? वो पानी जल पर पड़ा, पानी अग्नि पर पड़ा तो बुझ गई ना आग। तो अभी हम रोज देखते हैं कि पानी मैंने आग पर रखा चाय बनाने के लिए, उबलने लगा, उबलते उबलते इतना गर्म हुआ कि मेरा हाथ मैंने केटल पर लगाया या मेरी उंगली लग गई उसमें, हाथ जल गया। क्या कारण हुआ? जो जल ने अपनी नेचर छोड़ दी और अग्नि का गुण ले लिया, जीता क्यों नहीं? यानी पानी की तो जीत दोनों ही स्थिति में थी, पानी के ऊपर भी आग पड़े, आग के ऊपर पानी पड़े, हर परिस्थिति में पानी जीतता है। तो ये मेरा पानी गर्म क्यों हो गया? मेरी शीतलता, ठंडक, ठंडा पानी उबलने क्यों लग गया? माताएं अनुभवी होंगी, भाई भी अनुभवी होंगे, क्या कारण है जो ठंडा पानी उबलने लगा? बीच में बर्तन आ गया, बीच में पानी और आग के बीच में बर्तन आया, बर्तन ने बर्तन चेंज कर दिया, व्यवहार ही चेंज कर दिया। वो पानी जो मैं ठंडा पीने के लिए, वो मैंने मुख में डाला, छाले पड़ गए। तो ये बाबा कहते हैं बच्चे स्व स्थिति में स्थित रहो, स्व स्थिति में स्थित रहो तो परिस्थिति का प्रभाव नहीं पड़ेगा, वो पराई चीज का, अग्नि का प्रभाव नहीं पड़ेगा। वायु है, वायु शीतल है, शुद्ध है, परंतु आज वायुमंडल में फिर क्या है? वायु में कौन सा विकार समा गया है? धरती में ग्रेविटी समाई है, आकर्षण समाया हुआ है, पानी में, ब्लड में मोह समाया हुआ है, ब्लड कनेक्शन में, इसलिए बाबा कहते हैं दे तथा दे के संबंध को भूलो। अग्नि में देह का भान बीच में आया तो क्रोधी बने, अभिमानी बने, अपमान महसूस हुआ, क्रोध समाया है, स्वपरिवर्तन की शक्ति समाप्त करने वाला। वायु में क्या समाया है? वायु में मुझे भूख नहीं है, मैं घर में आता हूं, कोई खाना खाना है नहीं, नहीं मैं पेट भरा हुआ, अभी थोड़ा रेस्ट करूंगा। देखा तो समोसे तल रहे हैं, कड़ पकौड़ा बन रहा है, चिप्स तले हुए हैं, कहते थोड़ा सा खा लेता हूं फिर सो जाऊंगा। तो वो थोड़ा खाया, किस चीज ने जिब्बा को लोभी बना दिया, सारी प्लेट खा गया, ये भी नहीं देखा कि कोई और का हिस्सा भी है। तो जिब्बा में, उसमें वायुमंडल में लोभ की वृत्ति है। मैंने आवाज में सुना, जैसे खाने में मुझे खाना नहीं था पर डबल खा लिया, टेस्टी लगा क्योंकि सुगंध उसकी आई। मैंने सुना रेडियो पर या किसी ने बोला, लिखा हुआ पढ़ा, बाई वन गेट टू फ्री, बाई वन गेट थ्री फ्री। मैंने ले लिया चार, मेरे को जरूरत नहीं है, घर में सामान पड़ा हुआ है एक, परंतु क्योंकि वो आवाज फैली, अरे वो सेल पर है, एक के बदले चार मिलते, तो वायुमंडल के प्रभाव में लोभी बन गए। आकाश अनलिमिटेड है, हर एक चीज मेरे अंदर होनी चाहिए, सूरज चांद सितारे धरती तक, ये सब आकाश के अंदर होने चाहिए। तो हर से अपने आप को ऊंचा, अभिमान का आसमान जितना चढ़ा हुआ है, इसका सिर तो आकाश तक चढ़ गया है। तो हर एक को अपने कंट्रोल में रखना, अथवा अपने अंडर रखना, अथवा अपने प्रभाव में रखना, बेहद होते भी दूसरों को हद में ले आना। तो पांचों तत्व का बना शरीर हमको जो निर्विकारी स्थिति थी उससे विकारी स्थिति में ले आता है। तो उसके अंदर विकार समाये हैं, उन पर हमको जीतना है, यानी इमोशंस को जीतना है, अपने शांत स्वरूप की स्मृति में रहना है, देह से न्यारे आकर्षण से परे रहना है, स्वाभाविक स्वरूप स्वाभाविक शांत की स्मृति, स्मृति से स्थिति बनती है ना, विस्मृति से नेचुरली है, जो कार्य करना है उसकी शक्ति खत्म हो जाती, होते यूज नहीं कर सकते। दूसरी बात यह है कि आज प्रकृति तमो प्रधान होने के कारण वायलेंट है, चैतन्य नहीं है, तो जो फीलिंग है वो समाप्त हो गई है। तो हम भी जब देह के भान में आ जाते हैं पांचों तत्वों के प्रभाव में, तो हमारी जो स्नेह की, दया की, क्षमा की, नुकसान किसी को ना पहुंचावे, सबका भला करे, सिंपथी रहम, ये समाप्त हो गया है। वैसे आग तो बहुत काम की चीज है, घर में खाना बनाते हैं, अच्छी तरह से ओवन में कुछ पकाते हैं, प्रैक्टिकल है, बहुत फायदे वाला है। पर अग्नि में मेरा हाथ जल गया, ओवन को ये नहीं आया कि इसको मैंने हाथ जला दिए। आग किसी के घर में लग गई, मकान जल गया, व्यक्ति पर जो रहने वाले मर गए, अग्नि को दया नहीं आई कि मैंने इनको मार दिया। सुनामी आई, लाखों के खत्म हो गए, संकल्प नहीं आएगा कि मैंने इसका जीवन खत्म किया है। तो आज मनुष्यों में वायलेंस की फीलिंग्स नहीं रही है, प्रकृति में वो चेतनता ना होने के कारण दुख है या सुख है, सुख का अपना सुख का संस्कार के साथ साथ जो सुख की, सुख की फीलिंग रहे, दुख की फीलिंग ना पहुंचाए, तो ले भी लेता है प्रभाव और प्रभावित करता भी है। तो इसलिए बाबा कहते हैं प्रकृति जीत बनो, यानी प्रकृति के प्रभाव से न्यारे रहो। लड़ाई अभी प्रकृति से युद्ध थोड़ी करेंगे, बरसात पड़ रही है तो लड़ाई थोड़ी करेंगे बरसात से, लड़ाई तो नहीं करेंगे, क्या करेंगे, छतरी लेके चलेंगे, रेनकोट पहन के जाएंगे, अपना बचाव करेंगे, फाइट नहीं करेंगे। तो स्व स्थिति से प्रकृति की प्रकृति जीत बन सकते हैं। ये बाबा बार बार अपने गुण को, हम अगर हम चैतन्य आत्माएं हैं तो हम जितना जितना अपनी चेतनता में रहते हैं और अपने जो निजी गुण हैं उनसे उसमें स्थित रहते हैं तो विघ्न विनाशक बनते हैं। तो जैसे प्रकृति अपने रियल गुण को त्याग देती है और दूसरे के प्रभाव में आ जाती है, दूसरे तत्व के, तो विघ्न विनाशक बनना मतलब विघ्न आते हैं प्रभाव से और स्वभाव के टकराव से। किसी दूसरी आत्मा का कि नेचर, जैसे नेचर नेचर पर असर डालती है, तो ऐसे किसी का मानो आप बहुत अच्छी तरह से आगे बढ़ रहे हैं, आपका रैंक बहुत अच्छा है, पोजीशन बहुत अच्छी है, अभी आपका साथी, आपके साथ आपका कोलीग काम करने वाला, उसके अंदर जेलेसी है, कंपटीशन करना चाहता है। अब वास्तव में क्या है, विघ्न पड़ा, आपकी एनर्जी जो है, जो एक सहज रीति से काम करनी चाहिए, वो सहज रीति से काम नहीं करेगी, या ये रहेगा फौरन संकल्प आएगा, अरे काम पर जा तो रहा हूं पर उसका नेचर मैं नहीं सहन कर सकता, फौरन की नेचर वो याद आएगी, क्या कर्मों का हिसाब किताब है, मुझे यहाँ जॉब मिले क्या कर्मों का हिसाब किताब है, बच्चे ऐसे सत्संग में पड़ गए, तो क्या है कि मैंने पहले उनके संस्कार विचार और व्यवहार को मैंने ऑब्जर्व करने के बजाय एब्जॉर्व कर लिया। बाबा कहते हैं बच्चे ये ड्रामा है, हर चीज में कहते ड्रामा है, ड्रामा है, खाली कर्म की बात नहीं, ड्रामा को ध्यान रखो, फिर कर्म हिसाब से करो। तो ड्रामा में, हर सीन में ड्रामा कुछ है क्या, इसको समझने की जरूरत है। और ड्रामा को, ड्रामा समझ करके देखा तो सिचुएशन नेचर परिस्थिति ऐसे ही लगेगी जैसे कि डिज्नीलैंड में गया हूँ, डिज्नीलैंड में जा रहा हूँ। अब है तो डिज्नीलैंड में है तो व्यक्ति ड्रेस पहने हुए शेर की या भालू की या बंदर की, अब बच्चे जाकर के हेलो शेर के मुंह में हाथ डालते, शेर से हेलो करते, मालूम है कि इस ड्रेस के पीछे व्यक्ति है, शेर नहीं है। तो हमारी स्व स्थिति दूसरे की नेचर को जीत सकती है अगर हमको मालूम हो है तो ये भी आत्मा पर परवश है। हम पर चिंतन करने लग जाते हैं उनकी कमजोरी का और वो चिंतन हमारे चित्त पर असर डाल देता है। जितना जितना किसी के स्वभाव, नेगेटिव स्वभाव को हम चिंतन करते हैं, वो हम वृत्ति, हमारी वृत्ति उस अनुसार बनती चली जाती है, हमारी स्मृति उस अनुसार हो जाती है। तो नेचुरली वृत्ति और स्मृति और दृष्टि हमारी स्मृति को विस्मृति बना देती है, हमारी भावना को, शुभ भावना को, शुभ कामना को, उसकी पावर को कम कर देती है। तो नेचर प्रकृति जीत का मतलब ऐसे नहीं कि मैं पहाड़ पर जाकर ऊपर तपस्या करूं और वायुमंडल शुद्ध होवे हाँ ग्लोब लेकर के बैठ जाऊं और मैं दृष्टि दे रहा हूं कि सारे ग्लोब को शक्ति मिल रही है। ठीक है, वो एक विधि है, हम अपने संकल्पों को बेहद में लेके जाएं, कोई साधन कोई सिंबल को सामने रख के। जैसे भक्ति मार्ग में शिवलिंग का सिंबल है तो उसके हिसाब से पूजा करते हैं, देवियों के चित्र है इस हिसाब से पूजा करते हैं। अब चैतन्य में तो नहीं है, तो प्रकृति को भी शुद्ध करने के लिए प्रकृति का ग्लोब लेकर हम कमेंट्री करते हैं अथवा हम शुभ भावना रखते हैं, वो अपने मन की वृत्ति को ठीक करने के लिए अथवा बेहद बनाने के लिए। परंतु प्रकृति का नियम है। तो अब बाबा ने ड्रामा का जो ज्ञान दिया, उस ड्रामा के ज्ञान को भी समझना है। प्रकृति जीत में, प्रकृति में हर चीज इस ड्रामा अनुसार ही चलती है, उसका कनेक्शन है प्रकृति के पांच तत्वों से। प्रकृति सिर्फ पांच तत्व नहीं, पर प्रकृति पूरा संसार अथवा प्रकृति में एक खेल है, और खेल का मतलब ड्रामा है। परंतु हम सबसे ज्यादा अटकते किस बात में है, ड्रामा की पॉइंट पर ही अटकते हैं। प्रकृति के रहस्य को न समझा, प्रकृति की नेचर को नहीं समझा, वो नेचुरल कैसे है और रिपीट कैसे होती है। पर ड्रामा की बात को हम बहुत सारे बाबा के बच्चे टाइम लगाते हैं ड्रामा की पॉइंट को स्वीकार करने में। सब बातें अच्छी लगेंगी, परंतु अरे ये बात फिर होगी, अच्छा ये परिस्थिति फिर आएगी, यही हस्बैंड फिर मिलेगा, यही बात फिर मिलेगी, यही पैसे कोलीग फिर मिलेंगे, क्या कर्मों का हिसाब किताब है। और ड्रामा और कर्मा को मैंने समझा नहीं, मैं इसलिए नहीं रिपीट करना चाहता क्योंकि मुझे दुख दिया अभी। परंतु ये बात भूल गए कि वो तो 5000 साल के बाद आने की बात है। प्रकृति में ये प्रकृति के लॉज और स्पिरिचुअल लॉज, करेंसी के दो साइड्स हैं। आपके पास 500 का नोट है तो एक साइड समझो, ये कहेंगे प्रकृति का नियम, दूसरे साइड में स्पिरिचुअल नियम। दोनों नियम ठीक हैं तो नोट की वैल्यू है, नहीं तो जो नोट जाली है खोटा नोट हो जाएगा, खोट पड़ जाएगी किसी न किसी बात में। तो अभी आप देखिए प्रकृति का नियम क्या है कि हर चीज रिपीट होती है जरूर, और हम कॉन्शियसली या सबकॉन्शियसली या नेचुरली प्रकृति के नियम को इतना सहज स्वीकार करते हैं, रेपिटिशन को सहज स्वीकार करते हैं। हमको मालूम है कि आज सूर्य छिपा है, कल चढ़ेगा जरूर, वही सूर्य चढ़ेगा, वही सूर्य राइज होगा जो आज सनसेट हुआ है। अच्छा, हमने मकान बनाया, हमको मालूम है कि 100 साल के बाद ये पुराना हो जाएगा। कभी मैंने सोचा अरे क्या करना है बना के, 100 साल के बाद तो फिर पुराना हो जाएगा ना मकान, कभी भी नहीं सोचा। और पता है कि होगा जरूर, बच्चे जन्मे हैं, पढ़ाई पढ़ानी है, उनको पोजीशन अच्छी मिले, उनका जीवन अच्छा होवे, डबल ट्रिपल मेहनत करके पढ़ाई पढ़ाते हैं, कोई कोई डिग्री दिलवाते हैं, उनको मर तो जाना ही है, चाहे 60 साल के मरे चाहे 70 साल के मरे। मैं भी चला जाऊंगा तो भी, जाएंगे तो सही, ये नहीं सोचते। चलो बाकी बातें छोड़ो, रोज की बात, प्रकृति का नियम है कि मैंने खाना खाया है, मुझे शाम को नहीं तो कल भूख लगेगी जरूर। मैंने कभी सोचा अरे क्या करना है खाना बना के, आज नहीं बनाते कल भूख तो फिर लगाएगी। कभी सोचा? रोज रात को सोते हैं, क्या करना सो के, आज मैं नहीं सोती हूँ। अरे क्यों नहीं सोती हो? कल उठना पड़ेगा। यानी जो प्रकृति के नियम के हिसाब से जिसका ये शरीर बना हुआ है उसके हर नियम को मैं पालन करती हूँ। जनवरी के बाद नेक्स्ट ईयर जनवरी आएगी, फरवरी के बाद फरवरी आएगी, संडे के बाद मंडे ही कहेंगे, भूल से भी डेट नहीं बदली करेंगे। कपड़ा खरीदते हैं, पता ही है पुराना होना है, क्या जरूरत है नया कपड़ा खरीदने की। तो जो बाकी नियम प्रकृति के हैं उसको मैं स्वीकार कर लेती हूँ, पर जो ये बेहद का नियम है उसको हम ब्रेक लगा देते हैं। ड्रामा का मतलब क्या है? ड्रामा का मतलब भी यही है कि हम आत्माएं, ये बाबा रिपीट करने की बात क्यों बताते हैं कि दो बीमारियां हैं इंसान को विश्व में फैला महामारी है अथवा बीमारी है, एक तो डिप्रेशन की और दूसरी है अहंकार की, अभिमान की। या तो डिप्रेस जल्दी होंगे या हमको अभिमान जल्दी आएगा, मैंने किया, मैंने बेस्ट किया, मेरे जैसा किसी ने किया नहीं। तो ड्रामा कहता है अहम भाव किसका, तुमने किया। खाना रोज बनाते हैं, बनाते बनाते 50 साल हो गए तो नेचुरली अच्छा ही बनाएंगे ना। कोई जॉब करते करते एक्सपर्ट हो गए हैं तो जरूर एक्सपर्ट ही होंगे ना। कंपैरिजन की क्या बात है, अहंकार आने की क्या बात है, कंपेयर करने की क्या जरूरत है? तो किस प्रकार से हम अभिमान ना आवे, तो ये जो चीज बहुत वारी की है और ड्रामा के डायरेक्टर अनुसार किया है तो अच्छा ही होगा ना। तो अहम नहीं आएगा, दूसरे पर वहम नहीं आएगा, स्वाभाविक से दूसरे के स्वभाव में कमी देख करके रहम आएगा, अहम खत्म हो जाएगा, वहम खत्म हो जाएगा, रहम इमर्ज हो जाएगा, क्षमा के सागर बन जाएंगे। और दूसरी बात ये कि क्योंकि डिप्रेशन मैं नहीं कर सकता हूँ, मैंने तो कभी नहीं किया है, तो मैंने नहीं कर सकता हूँ या कभी नहीं किया है, तो मम्मा कहती थी, कभी कभी हम कहते थे, मम्मा आप ये हमको ड्यूटी दे रही हैं, मैं कैसे करूँगी, मैंने तो कभी किया नहीं। मम्मा ने कहा तुमने कभी नहीं किया? मैंने कहा नहीं मम्मा, अभी तो नया, आप नई ड्यूटी दे रही हैं। कहा तुमने तो बहुत बारी की है। नहीं मम्मा, मैं तो अभी आप अभी दे रही हैं ना। मम्मा ने कहा तुमने बहुत बारी किया, कलप कलप ये पार्ट बजाया है, अब वही तो रिपीट करोगी। तो उत्साह दिलाने के लिए हमने कलप कलप बेहद का पाठ बजाया है, कलप कलप हम ही विजयी बने हैं, कलप कलप हमारा ही बाबा टीचर और डायरेक्टर बनकर हमको ये डायरेक्शन दिया है। तो हम ड्रामा को साक्षियों करके देखें, सिचुएशन को समझें, इसलिए ज्ञान टीचर बना है। ड्रामा के ज्ञान के कारण ही वास्तव में हम देवता बनते हैं। अगर ड्रामा के ज्ञान को ठीक समझा, यानी परमात्मा टीचर को अपना संबंधी बनाया, जिसने ड्रामा के ज्ञान को नहीं समझा, मतलब सृष्टि के आदि मध्यंत का ज्ञान नहीं समझा, तो देवता नहीं बनते हैं। तो बाबा रचता का ज्ञान तो देते हैं, अपना और अपने रचना का भी ज्ञान साथ में देते हैं। और रचना का मतलब आदि में हमारे संस्कार कैसे थे, हम आत्मिक स्वरूप में कैसे स्थित थे, हमारा स्वाभाविक दिव्यता श्रेष्ठता था, हमारे संस्कार सुखदायी थे, हमारी नेचर प्रकृति सत्व प्रधान थी, संपत्ति में हम यानी प्रकृति के नियम अनुसार हमने संगम युग पर ही श्रेष्ठ कर्म किया और उसका फल पाया है। तो बाबा ने जो जब अच्छी तरह से हमको ज्ञान दिया तो हम आत्माएं फिर ड्रामा में एक्टिव डिटैच्ड ऑब्जर्वर और एक्टिव एक्टर होकर के काम करते हैं, तो न केवल इस प्रकृति पर जीत पाते हैं पर मनुष्य आत्माओं की नेचर पर भी, नेचर को जीतना तो ये भी नेचर है, उसमें भाव को ठीक समझना है, भाव और स्वभाव का टकराव, क्योंकि मैंने भाव नहीं समझा तो मेरा स्वभाव भी बदला और भाव नहीं समझा तो भावना भी बड़ी ठीक नहीं रही, इसलिए मेरी वृत्ति में टकराव होता है, डिटैच नहीं रह सकती हूँ, साक्षी दृष्टा नहीं रखती हूँ। तो बाबा ने ड्रामा का ज्ञान दिया है डिटैच होकर के, एक्टिव एक्टर बनो, डिटैच्ड ऑब्जर्वर बनो, एब्जॉर्वर नहीं बनो। हम एब्जॉर्व कर लेते हैं परिस्थिति को तो स्वस्थिति वाला वही बात हो जाती है, बीच में बर्तन आ जाता है, न केवल अपना परंतु दूसरे का भी। तो जल्दी अपने स्वभाव से भी तंग होते हैं, दूसरे के स्वभाव से भी तंग होते हैं। तीसरी बात यह है कि हम बहुत होशियार बन गए हैं। बाबा कहते हैं ड्रामा कि ब्रेक लगाओ, कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई बात हो गई टकराव की, ब्रेक लगाओ, फुल स्टॉप लगाओ, स्टॉप करो। तो हम इतने होशियार हो गए हैं कि गाड़ी चलाने से पहले ही ब्रेक लगा देते हैं गाड़ी चलाने से पहले ही ड्रामा में होगा तो करेंगे तो ड्रामा होगा। ड्रामा कहानी का नाम नहीं है, स्टोरी आप 50 बार भी पढ़ो आप ये नहीं कहेंगे कि मैंने ड्रामा देखा, एक बारी वो एक्ट में आया तो ड्रामा कहलाता है। तो जब तक मैंने एक्ट नहीं बदली है तब तक मेरा ड्रामा ड्रामा नहीं बनेगा। इसीलिए परमात्मा मुझे श्रेष्ठ कर्म करना सिखलाते हैं, परम पिता पिता बनकर के संस्कारों को जागृत कराते हैं और सतगुरु बनकर के सत्यता क्या है, पवित्रता क्या है, सभ्यता क्या है, दिव्यता क्या है। तो जितनी जितनी हमारी अपने संस्कार बदलते जाते हैं तो विघ्न तो संस्कारों के कारण, विचारों के कारण, व्यवहार के कारण आते हैं ना, कर्मों के हिसाब से आते हैं। विकार कोई ना कोई है, चाहे काम विकार की कामना हो, चाहे क्रोध हो, या कोई कहाँ आकर्षण और लोभ हो, तो विघ्न आएगा। या तो मेरे अपने विकार विघ्न डालेंगे या दूसरे के विकार मुझे विघ्न डालेंगे। तो दूसरे के विकारों को जीतने के लिए पहले मुझे अपनी प्रोटेक्शन चाहिए, उसके लिए मुझे ज्ञान भी चाहिए, गुण भी चाहिए और शक्ति भी चाहिए। तो जब तक मैंने परमपिता परमात्मा के साथ योग नहीं लगाया है तो डिटैच नहीं हुई हूँ तो शक्ति भी नहीं आएगी। जब तक सत शिक्षक की शिक्षा को गहराई से नहीं समझा है तो मैं एक्ट ठीक नहीं कर सकती, इंटरेक्शन ठीक नहीं होगा, एक्शन ठीक नहीं होगा। और जब तक ये अंदर निश्चय नहीं है कि मैं सचमुच आत्मा अधिकारी आत्मा हूँ, परमात्मा की संतान हूँ, परमात्मा के गुण तो मेरे स्वाभाविक गुण हैं, तो तो मैं वो विघ्न को खत्म कर सकती हूँ, परंतु प्रभाव में आने के कारण विघ्न प्रभाव डालते हैं। प्रभाव में आने के कारण मेरी शक्ति में अभाव आ जाता है, तो प्रभाव और अभाव विघ्न बन जाते हैं। इसीलिए हर प्रकार से किसी से भी न प्रभावित होना है और न प्रभावित करना है, न दुख लेना है न दुख देना है। ये बाबा ने जो शिक्षा दी है, तो विघ्न जो आते हैं वो विघ्न हमारे या तो अवगुण की कमी है, गुण की कमी है, अवगुण का फोर्स है, गुण अवगुण बन गए, गुण जो थे वो अवगुण बन गए तो विघ्न पड़ जाते हैं। प्रेम जो है वो मोह बन गया तो बच्चे विघ्न पड़ गए, प्रवृत्ति विघ्न वाली बन गई। प्रेम गुण था, परंतु जहां जैसे ही उसमें देह का भान मिला वो अवगुण रूप में आ गया, तो मोह विघ्न बन गया। बच्चों की पालना करनी है, संभालना है, टाइम नहीं मिलता है, मैं समय नहीं निकाल सकती, चिंता होती है, चिंतन बढ़ता है, सेवा का विचार मंथन नहीं चलता है, तो प्रस्वाउन्नति में भी विघ्न पड़ता है। और उनके द्वारा भी जिनके साथ मेरा मोह है उनका भी वो विघ्न पड़ता है हमको। तो जब हम नेचर को, प्रकृति, बाहर की प्रकृति को जीतना चाहते हैं, तो अपनी नेचर को, स्वभाव को बदली करें। क्यों कि प्रभाव नहीं तो स्वभाव बदली कर दिया। जैसे एक मिसाल देती हूँ, पानी है ये, अरे ये गिलास भर पानी है, क्लीन है, इसको मैं पीऊँ, ठंडा है, शीतल है, हेल्दी है। दूसरी विशेषता इसकी क्या है, ये क्लीन है, मेरा कपड़े को साफ कर देगा, मैला नहीं करेगा, मैले को साफ करेगा। तीसरी विशेषता ये है, ये ट्रांसपेरेंट है, मुझे इसमें अपनी शक्ल दिखाई देती है। सामने पानी रखो थाली में, आपको अपना दर्पण पर। चौथी विशेषता क्या है, इसमें फ्लो है, ये पकड़ता नहीं है, कितना भी आप पकड़ने की कोशिश करो, समुद्र में स्नान करो या गंगा में स्नान करो, पानी पकड़ेगा नहीं आपको। परंतु अगर मैं थोड़ी मिट्टी डाल दूं इसमें, बीमार कर देगा पानी, देह की मिट्टी, थोड़ी और मिट्टी डाली देह के संबंध की तो मैला हो गया, थोड़ी और मिट्टी डाली ट्रांसपेरेंसी खत्म हो गई, थोड़ी और मिट्टी डाली एनर्जी का फ्लो स्लो हो गया, थोड़ी और मिट्टी डाली एक एक विकार बढ़ता गया, तो क्या हुआ, उसका नाम ही बदल गया। क्या बन गया, पानी कीचड़ बन गया। कीचड़ चिपकेगा, पानी चिपकेगा नहीं, किचड़ मेरे कपड़े को मैला करेगा। कितना फर्क पड़ गया, वो जीतने के बजाय मिट्टी ने मुझे जीत लिया, वो पानी धोने वाला था, वो पानी मिट्टी बन गया। तो मुझे आत्मा ने आत्मिक स्थिति से जितना जितना देह का भान का अभ्यास बढ़ता गया, विकार बढ़ते चले गए, तो मेरे संस्कार और मेरा विचार, मेरे श्वास से, मेरे संकल्प से, मेरी वृत्ति से वायुमंडल बनता है, मेरी वाणी से वातावरण बनता है। मैं कैसे फैलाती हूँ बात, पर चिंतन, पर दर्शन, दोष दर्शन। तो प्रकृति को जीतने से पहले, प्रकृति ने जो मुझे वरदान दिया है, ये मेरे ऑर्गन्स है, मेरी पर्सनल प्रॉपर्टी है, तो मेरी दृष्टि, मेरे कान, मेरा मुख, मेरी जबान, मेरा टेस्ट, मेरे आकर्षण यानी मुझे मेरी इच्छाएं हैं, जितना जितना मैं उन पर विजय प्राप्त करती जाती हूँ, तो विघ्न विनाशक बनती जाती हूँ, माया जीत जगत जीत कर्मातीत बन जाती है। समय होता है, अभी बंद करती हूँ। ओम शांति।
तारे नभ से रोशनी करते जहां